हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णतदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेमा पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पुरेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। ब्रजे वसंतम् नवनीत चोरम् गोपांगनानां सदुकूल चोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यम् पुरुषं नमामि श्रीकृष्ण श्यामं
मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं कुरु तु वाचारं पंगुं लंघयति कीरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्
श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 19 जिसका शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो हम सबने देखा कि महाराज सुखदेव गोस्वामी उस स्थान पर जहाँ पर परीक्षित महाराज समस्त ऋषि गणों से घिरे हुए हैं और उनसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति का पूरे जो हर समय हर स्थान में हर स्थिति में एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है और मरणासन जो व्यक्ति होता है उसका क्या कर्तव्य है मुझे बताइए। ऋषियों ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो विचार विमर्श ही कर रहे थे कि इस समय क्योंकि परीक्षित महाराज के पास अब समय बहुत ही कम है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इतने में वहां पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। वो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर थे। उनका स्वरूप उनका रूप लावण्य भगवान के जैसा सुंदर था। तो उनको देखकर परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि अब उनके भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। और क्योंकि वो भगवान की कथा श्रवण करना उन्होंने स्पष्ट कहा था समस्त ऋषियों मुनियों को कि आप भगवान की कथा सुनाइए मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ। और क्योंकि सुखदेव गोस्वामी चलते फिरते भागवत है तो महाराज परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए। और उनको देखकर महाराज परीक्षित ने कहा 32 में अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्र बंधव मेरे आहो भाग्य आज मैं बहुत धन्य हो गया हूँ जो आपने कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थिका कृता आपने आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है और आपके आने से मैं तीर्थ की तरह पवित्र हो गया हूँ। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मेरे समस्त पाप तो आपको देखने से आपके दर्शन करने से ही कट गए हैं और अब मैं इतना पवित्र हो गया हूँ कि आपके दर्शन करने से मैं इतनी मेरे अंदर पवित्रता आ गई है। भवत भी तीर्थ का कृता जिस तरह से जीव तीर्थों में जाकर पवित्र होते अब आपके सानिध्य के कारण मेरे अंदर इतना पावर आ गया है इतना पवित्रता आ गई है कि अब मैं भी तीर्थ की तरह से जीवों को पवित्र कर सकता हूँ। क्यों एक सिद्धांत बताते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर। वे कहते हैं येषां संस्मरांत पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैक्रा। वो व्यक्ति जिस जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जिसका हृदय भगवान की प्रेमा भक्ति से प्रफुल्लित होता है, जिसके हृदय में भगवान आकर विराजमान होते हैं, ये शाम संस्मरात पुंसाम, यदि उसका कोई स्मरण भी कर देता है, पूरे घर में यदि एक व्यक्ति और वो भी वो जाकर दर्शन ना करे, अपने घर में बैठा हुआ है या ऑफिस में बैठा हुआ है या गाड़ी में चलते फिरते बस उसका स्मरण मात्र हो जाए, किसी सदगुरु का हृदय में एक आभास आ जाए, उसका उसकी याद आ जाए, किसी तरह से उसके विषय में कुछ स्मरण हो जाए, यह स्मरण शरण पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह, उस एक व्यक्ति के भगवत भक्त के स्मरण करने से उसका पूरा घर जो है वो पवित्र हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का पवित्र होना बहुत आसान है, परंतु पूरे परिवार का भगवत भक्ति प्राप्त करना या शुद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु यहाँ पर एक सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि एक शुद्ध भक्त का केवल स्मरण भी हो जाता है, वास्तव में भक्तों यहाँ पर यह सिद्धांत बताया जा रहा है कि हमें सदैव शुद्ध भक्तों का स्मरण करना चाहिए। उन्हें यहाँ साफ बताया, एक गृहस्थी जो है उसका यह कर्तव्य है कि घर में सारा दिन चिक-चिक ना करता रहे। यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं जो गृहस्थी लोग होते हैं, बस बच्चों की कित-कित, बड़ों की कित-कित, घर में ये हुआ वो हुआ, पड़ोसी ने ये किया, नहीं, उनको स्मरण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के विषय में वार्तालाप होना चाहिए, ताकि उसे क्या होगा, शुद्ध्यन्ति वैग्रह, वो घर का पूरा वातावरण शुद्ध होगा, और जिसके केवल स्मरण मात्र से हमारे जीवन में शुद्धि प्राप्त होती है। किम पुनर्दर्शनस्य पाद शौचासनादिभि, फिर उनका दर्शन करने से, उनका स्पर्शन करने से, उनको छूने से, उनके चरण को धोने से, भला उनकी सेवा करने से कितना जीव का कल्याण होगा, उसका तो क्या कहना। तो ये बहुत ज्यादा साधु संत जो होते हैं उनके हृदय में भगवान साक्षात विश्राम करते हैं, भगवान विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रस्थ होते हैं, जो सदैव अपने घर बार में ही परेशान रहते हैं, उनका एक कर्तव्य है, यदि वो वास्तव में अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं तो अपने घर पर उन्हें साधुओं को बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये गृहस्थियों का परम धर्म है। और जिसको ये अवसर प्राप्त होता है उसे समझना चाहिए कि बस ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसी से हमारा सारे कुल का कल्याण होगा। जैसे किसी को लग सकता है कि एक व्यक्ति यदि भगवान के भक्त का स्मरण कर रहा है तो पूरे घर का कल्याण को, ये तो सिद्धांत है, ये तो स्वाभाविक है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति हमारे घर में से कोई चोर बन जाता है या मर्डर बन जाता है, किसी को वो मार डालता है, उसको पुलिस पकड़ लेके जाती है, ठीक है, फिर पूरा घर परेशान होगा या नहीं होगा, उसका पिताजी जाएगा, वो जाकर वहां पर पुलिस में जमानत देगा, उस किसी तरह से वकील करवाएगा, और रोज रोज कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पूरे उसकी फैमिली, उसके चाचा, उसके मामा, उसके ताया, सब लोग जुट जाएंगे, सब लोग परेशान होंगे या नहीं होंगे। तो एक व्यक्ति के अपराध से यदि पूरा घर और पूरा परिवार परेशान हो जाता है, तो एक व्यक्ति के सत्कर्म से पूरे व्यक्ति का कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, येषां संस्मरात, परीक्षित महाराज कहते हैं, येषां संस्मरात पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह, पूरा घर उससे पवित्र हो जाता है। तो अब वो कहते हैं श्लोक नंबर 34 में, सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति भय पुंसाम विष्णुरिव सुरेतरा। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति भय पुंसाम विष्णुरिव सुरेतरा। सानिध्याति, आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति के कारण ते ते यानी आप जैसे ही हमारे सामने महायोगी, हे योगियों में सबसे महान, हे परम योगी, आप जैसे साधु साधु के सामने आते ही पातकानी महान त्यपि, पातक कहते हैं अपराधों को, हम जितना भी बचे इस भौतिक जगत में हमारी वृत्ति ऐसी है अपराध हो ही जाते हैं। तो अपराध चाहे कितने ही महान त्यपि, कितने ही महान हो, कितने ही भयंकर अपराध हो, महान से महान अपराध भी किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो वो सारे के सारे सद्यो नश्यन्ति वैपुंसम, सद्यो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। कैसे यहाँ बता रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ दृष्टांत देते हैं, विष्णुरिव सुरे तरह, विष्णुरिव जिस तरह से भगवान विष्णु के समक्ष आते ही दुष्टों का विनाश हो जाता है, सूर्य तरह मतलब वो जो देवता के अतिरिक्त, सुर कहते हैं देवताओं को, इतना मतलब अतिरिक्त देवताओं के उलट यानी असुर जो होते हैं वो सारे असुर जो जिस तरह से विष्णु के समक्ष टिक नहीं सकते हैं, उसी तरह से जो भगवान के भक्तों का सानिध्य करता है, जो भगवान के भक्तों का संग करता है, उनके समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप टिक नहीं सकते विष्णु के भक्त के समक्ष, या जो भक्तों का संग करता है उनके सानिध्य से ही जीव के अंदर इतनी पवित्रता आ जाती है कि अपराध उसी तरह से उसके जीवन से निकल जाते हैं जिस तरह विष्णु के प्रकट होते ही असुरों का विनाश हो जाता है। अनुवाद देखिए, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह से हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करने के कारण देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता, असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान जो ही अपने नाम रूप गुण लीला साज समान या अनेक रूपकता के कारण प्रकट होते हैं त्यों ही असुर नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपनी दुष्प्रभाव का ना डाल सके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य में बताया कि अपराध चाहे किसी भी स्वरूप में हो, अनिष्ट चाहे किसी भी स्वरूप में हो, जब हम भगवान के भक्तों की संगति करते हैं, जब भगवान जिस तरह से भगवान किसी भी स्वरूप में आए, चाहे अपने नाम के रूप में, चाहे गुण के रूप में, चाहे लीला के रूप में, जहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है वहाँ पर दुष्ट नहीं आ सकते। दुष्टों को हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भागवत कथा में सब बहुत कम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान के सामने ठहरना हर किसी के बस की बात नहीं। भगवान के सामने आकर दुष्ट खड़ा रह सके ये संभव नहीं है, तो भागवत कथा साक्षात भगवान है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान ने ऐसी कथाओं को श्रवण करने का अवसर दिया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सिद्धांत यहाँ से ये लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिससे सांसारिक असुर, भूत प्रेत, दुष्प्रभाव, अपवित्रताएं, अपराध, वो सब हमसे दूर रहेंगे। इस तरह ये कहते हैं कि पातकानि महान्त्यपि, कितना ही बड़ा अपराध हमारे ऊपर जो भी कष्ट है ना, वो हमारे अपराधों के कारण है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, इससे कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्ध भक्त का संग करें और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने शुद्ध भक्तों का संग हमें सदैव प्रदान करें। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, बहुत ही सुंदर और विनम्रता पूर्वक यहाँ पर परीक्षित महाराज अपने आप को तुच्छ बताते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आए हो वो प्रकट भगवान की कृपा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु भगवान के इस प्रेम का पात्र मैं नहीं हूँ। वे कहते हैं, अभी मैं भगवान प्रीत है, कृष्ण पांडव सुत प्रिय, पैतृष्व से प्रीत्यर्थम तत्कोत्र यात बांधव, अपि मे भगवान प्रीत कृष्ण पांडव सुत प्रिय पैतृष्व से प्रीत्यर्थम तत्कोत्र यात बांधव, अपि मे भगवान प्रीत, मुझसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और कृष्ण पांडु सुत प्रिय, उसका कारण ये है कि क्योंकि मैं भगवान जो है वो पांडव सुत यानी पांचों पांडवों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए मैं भी उनके प्रेम का केंद्र बन गया। बस ये उनके, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त बनता है तो संपूर्ण घर पे कृपा होती है, एक भक्त का यदि एक व्यक्ति स्मरण करता है तो पूरे घर का कल्याण होता है। तो मेरे पांडव जो मेरे वंश, जिनका मैं वंशज हूँ, वो क्योंकि कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे, वो क्योंकि कृष्ण के बहुत प्रिय थे, इसीलिए पैतृष वसेय प्रीतर्थम, ये सिर्फ पैतृष, इसका मतलब ये है कि पिता के संबंधी से, स्वसेय यानी बहन के बेटे, अभी पिता के बहन के बेटे हम भांजे हैं, तो भगवान जो है वो मेरे जो पांडव गण हैं, मेरे जो दादा गण हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि उनका संबंध था। तो आगे से कहते हैं प्रीति अर्थम, उन्हीं के संबंध, उनके प्रेम के संबंध के कारण तद्गोत्रस यात बांधवा, उसी के गोत्र से मैं हूँ, उन्हीं के वंशज से हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे स्वीकार किया है अपने मित्र के रूप में, वरना मेरे अंदर कोई भी ऐसी तपस्या मैंने नहीं की, ना ही कोई मेरे अंदर गुण है, ना ही मैं समझ रहा हूँ कि मैं पांडवों के वंशज में हूँ, इसीलिए मुझसे भी भगवान बहुत से प्रेम करते, इसीलिए आज आप मेरे जीवन में आए हो, आपका मुझे दर्शन हुआ है, क्योंकि ये भगवान जो है वो मेरे पूर्वजों से बहुत प्रेम करते थे और उनके प्रेम, उनकी भक्ति के कारण आज मुझ पर कृपा हुई है। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने जो राजा पांडव के पुत्रों के को अत्यधिक प्रिय हैं, अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक विशुद्ध अनन्य भक्त अपने परिवार की सेवा, झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की उपेक्षा अधिक ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक आवेग पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर होता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी सूचना नहीं रहती है कि भगवत भक्त बनकर वे परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त ही क्यों न हो। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बताते हैं कि जब कोई भक्त बन जाता है ना, तो सब लोग को ऐसा लगता है अब तो ये भक्त बन गया, अब बस हमारा परिवार वाले सोचते हैं अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, अभी हमारी सेवा नहीं करेगा, हमारे लिए ये किसी काम का नहीं, ये तो भक्त बन गया, सारा दिन महामंत्र जप करता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है, ये तो अभी समझो गया, हमारे लिए तो होना ना होना बराबर है। लेकिन वास्तव में अगर भौतिक स्थिति पर कोई आपकी सेवा कर रहा है, भौतिक धन कमा के देता है, जैसे अगर हमारा कोई बेटा है भौतिक स्थिति पर यदि माता पिता की सेवा कर रहा है लेकिन भक्त नहीं है, तो उससे माता पिता का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन परिवार में यदि एक सदस्य भी भक्त बन जाता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, पूरे परिवार का इस भौतिक जगत से जन्म मरण सफल हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, पूरे खानदान, क्योंकि भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, उसके पूरे परिवार की विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे श्रीला प्रभुपाद जी महान भक्त प्रहलाद के विषय में बताते हैं कि महाराजा प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यपु महान नास्तिक तथा भगवान का प्रख्यात शत्रु था, किंतु इतना होते हुए भी हिरण्यकश्यपु को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवार वालों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे, महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बहन थी, महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त यदि अपने घर वालों के साथ भी रहता है, भले वो लोग उसको कष्ट देते हैं, भले वो उनको छोड़ देता है भक्ति के कारण, लेकिन जिस तरह प्रहलाद महाराज के पिता भगवान के प्रख्यात शत्रु थे, वो तो भगवान को कभी भी नमस्कार भी नहीं किए, भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते थे, स्वयं को भगवान, लेकिन उनके खानदान में एक भक्त उत्पन्न हो गया। प्रहलाद महाराज ने कहा था भगवान को, जब भगवान उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि भगवान आप जानते हैं कि मेरे पिताजी तो महादुष्ट हैं, महासुर हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता की सदगति, वरना सब लोग बोलेंगे कि देखो कैसा पुत्र था, इसके कारण इसकी अधोगति हो गई इसके पिता की, तो मैं पुत्र हूँ, मेरा कर्तव्य है अपने पिता की सेवा करना, मैंने जीवन में उनकी कोई सेवा नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी सदगति हो। तो भगवान ने उन्हें कहा, प्रहलाद तुम एक पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त के 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की सब तरेंगी, चाहे वो भक्त बने या ना बने। तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण तभी होता है जब हमारे परिवार में कोई एक भक्त बनता है, लेकिन इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि हम देखें बस वो भक्त बन गया है अब उसके कारण हमारा कल्याण हो जाएगा, हम लोग तर जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसके हृदय में क्या चल रहा है, कौन वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्यों ना वो भक्त हम ही बने जिसके द्वारा हमारे कुल का कल्याण हो जाए, जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों का कल्याण होना चाहिए। तो इंडिविजुअली हम सबको यही सोचना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम सबका कल्याण होगा, हमारे पूरे परिवार का कल्याण होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अपनी दीनता बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, लेकिन भगवान मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है। अगर मुझे कैसे पता चला कि भगवान मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो तो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि आप मेरे सामने प्रकट हो, आप मेरे समक्ष खड़े हो, इससे अधिक और सौभाग्य क्या हो सकता है। क्योंकि मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कहाँ पर हो। वे कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, अन्यथा ते व्यक्त गति दर्शनम न कथम नृणाम नितरम म्रियमाणानाम
संसिद्धस्य वनीयसि अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसि।
अगर भगवान की मुझ पर बहुत ज्यादा कृपा न होती, अगर भगवान मुझसे अत्यधिक स्नेह ना कर रहे होते, अगर भगवान मेरे विषय में अभी ना सोच रहे होते, अन्यथा ते व्यक्तगते, आप तो सदैव व्यक्तगते यानी किसी के सामने दृष्टिगोचर नहीं होते हो, अदृश्य रहते हो, आप पता नहीं कहाँ रहते हो, किसी को दिखते नहीं हो, तो दर्शनम ना कथम नृणाम, फिर उनका दर्शन मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कहाँ पर हो, मैंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, मुझे उस जमाने में कोई कांटेक्ट होता नहीं था। साधु से मिलना, किसी से, किसी ऐसे साधु से स्पेशली जो विचरण करते रहते हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट हो पाना संभव नहीं होता था। उनके दर्शन हो जाते ना अगर इत्तफाक से, तो समझ ना चाहिए था कि ये भगवान की कृपा हुई किसी शुद्ध भक्त के। वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि जब किसी शुद्ध भक्त के द्वारा हमें भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज महाराज परीक्षित अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान की मुझ पर कृपा न होती तो ऐसा कैसे संभव था कि आप नितराम, आप परम शुद्ध हैं, आप विशेष रूप से इस समय मृियमाणा नाम, जब मेरी मृत्यु होने वाली है, आप कहाँ से प्रकट हो गए। ये सब तो भगवान की कृपा है आपके, आज इस समय मृत्यु के समय मेरे लिए आपके दर्शन करना संभव हुआ है, वरना मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। ये तो भगवान, मेरे पूर्वज भगवान के भक्त थे, भगवान उनके साथ स्नेह करते थे, इसी के कारण मैं भी भगवान के स्नेह का पात्र बना और आपके समक्ष खड़ा हूँ। आज इस मृत्यु के समय मुझे आपके दर्शन हुए, इससे बड़ा सौभाग्य कभी। भगवान यदि किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो किसी शुद्ध भक्त को उसके सामने प्रकट कर देते हैं। हमारे सामने यदि किसी शुद्ध भक्त का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसका दर्शन प्राप्त हो जाए, चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए, तब हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसी कमाई की होगी जो आज मुझे इन शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त हुआ है। अनुवाद देखिए, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते रहते हैं और हम मरण आसनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। श्रील प्रभुपाद खींचे, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महर्षि सुखदेव गोस्वामी निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराजा परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि हमें भक्ति के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु भगवान का व्यक्ति प्रतिनिधि होता है जो उसे चरम सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्रील सुखदेव गोस्वामी वैद्य गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए वैद्य प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाकर चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पाता है, किंतु यह भगवत भक्त की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। यूं ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं।
इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत नाम जाना ध्रुव हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही बड़े सिद्धांत के विषय में बताया। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे शुद्ध गुरु की प्राप्ति हो, लेकिन वो शुद्ध शिष्य बनना नहीं चाहता। शुद्ध शिष्य का मतलब होता है कि हृदय में भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा न हो। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज के मन में और कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। हमारे हृदय में जैसी भावना होगी वैसा ही गुरु आएगा। महाराज परीक्षित ने नहीं सोचा था कि कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे परम गुरु यहाँ पर आके प्रकट होंगे और मुझे शिक्षा देंगे। नहीं, उन्होंने केवल यही सोचा था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। हमें केवल हृदय में यही सोचना है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जब हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास पक्का होता है, हमारी रुचि केवल कृष्ण प्राप्ति में होती है, तो कृष्ण पूरा प्रबंध स्वयं करते हैं। हमें गुरु ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल स्वयं से सिंसियर होना है कि मैं वास्तव में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, तो भगवान अवश्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पुनः वही प्रश्न कहते हैं जो पहले उन्होंने प्रश्न पूछे थे, वही प्रश्न उनसे वापिस से पूछ रहे हैं, एकदम क्लियर करके पूछ रहे हैं कि अब मैं आपके समक्ष आया हूँ, आप मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं अपने हृदय की जो जिज्ञासा है वो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा न हो कि आप चले जाओ या मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे वास्तविकता पता ही ना चले, इसलिए समय नहीं वेस्ट करता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वे कहते हैं श्लोक नंबर 37, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अत्यंतिक महत्वपूर्ण, जीवन का सबसे वास्तव में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई हो ही नहीं सकता। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, आपसे पूछता हूँ सिद्धि क्या है, पूर्णता का मार्ग बताइए। योगिनाम परमम गुरु, आप समस्त योगियों के परम गुरु हो, मैं आपसे सिद्धि का मार्ग पूछ रहा हूँ, पूर्णता का मार्ग पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए। क्लियर प्रश्न है, प्रश्न में कोई संदेह नहीं है, भागवत का प्रश्न एकदम क्लियर है। वे कहते हैं पुरुषस्य येह यत् कार्यम, पुरुष का, एक जीव का हर समय, हर स्थिति में, हर समय, सभी स्थान में एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, मतलब कोई भी समय की नहीं रखी, रात हो, दिन हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, या फिर है ना संध्या हो, हर समय जीव का क्या कर्तव्य है। पुरुषस्य येह यत् कार्यम, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, और स्पेशली म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हो उसका क्या कर्तव्य है, ये बताइए। आप इन दोनों प्रश्नों को क्लियर कीजिए। अनुवाद देखिए, परीक्षित महाराज कहते हैं आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों को और विशेष रूप से उसे जो मरणासन है, सिद्धि का मार्ग दिखलाइए, बताइए क्या सिद्धि है। पृच्छामि संसिद्धिम, सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताइए, जीव क्या ऐसा करे कि उसका जीवन सफल हो जाए। अनुवाद देखिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई सिद्धि के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह से उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है, भौतिक वस्तुओं या वासनाओं को पूरा करने के लिए गुरु नहीं किया जाता है। आज का तो गुरु एकदम फैशन हो गया है, बस फैशन, ये मेरा गुरु है, मैं इसका चेला हूँ बस, तो ऐसे गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में यदि आप जीवन की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तभी गुरु करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु गृहस्थ का अलंकरण नहीं होता। सामान्यता फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु को मान लेता है। ऐसा छद्म गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य हैं, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेषतया मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रश्न एकदम क्लियर है और उस प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवतम। ये प्रश्न कि जीव का क्या कर्तव्य है और मृत्यु के निकट जो जीव खड़ा है उसे क्या करना चाहिए, उसका उत्तर, उसके उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उसका वो है श्रीमद् भागवतम। अर्थात एक जीव का कर्तव्य है कृष्ण कथा श्रवण करना। कृष्ण कथा मनुष्य शरीर जो बना है वो मिला है श्रवण करने के लिए। इसे भगवान ने दो कान दिए हैं कि श्रवण करते जाओ। और अगर देखा जाए तो जीवन भर हम श्रवण ही करते हैं। जब से जीव पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। लेकिन अब इसी प्रश्न को महाराजा परीक्षित बहुत ही क्लियर करके समझा रहे हैं। प्रश्न को हमें एकदम क्लियर समझना चाहिए, तभी हमें उसका उत्तर समझ में आएगा। वे कहते हैं श्लोक नंबर 38, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्य निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्य निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययम। आप मुझे ये बात बताइए, यत् श्रोत्रम, यत् श्रोतव्य, सुनने योग्य क्या है? इसका मतलब है परीक्षित महाराज बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी वो सब कुछ सुना दीजिए, वो सारी बातें बता दीजिए जो मनुष्य को सुननी है चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है। हम देखते हैं स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, घर में बड़े छोटे हर कोई किसी न किसी को कुछ समझाता ही रहता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करो ये नहीं करो, इसे करना चाहिए। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे वही बोलते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है, उनको समझाते हैं। पति पत्नी को समझाता है, पति पत्नी को समझाती है, और उसके अतिरिक्त टीचर्स स्टूडेंट्स को समझाते हैं, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। संसार को समझने में ही पूरा का पूरा अपने जीवन का प्रयोग कर दिया तो भगवान को कब समझेंगे? सिद्धि प्राप्त होगी नहीं जब तक हम केवल जीवन के इन भौतिक विषयों पर ही कार्य करते रहेंगे। इसीलिए बता रहे हैं, पूछ रहे हैं साफ साफ कि यह श्रोतव्य जो कुछ सुनने योग्य है वो सब बताइए। यथो जप्यम, जप्यम मतलब बोलना, जीव सदैव बोलता रहता है, बोलने से कभी थकता नहीं है, हर कोई हर वक्त बोलना चाहता है कि कुछ मैं बोलूं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं यह जप्यम वो क्या है जिसे बार बार बोलना चाहिए, जप मतलब बार 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 कौन सी चीज बोलनी चाहिए, और यत कर्तव्यम वो इंद्रियों के द्वारा क्या कार्य करना चाहिए, कर्तव्य यानी हमारी इंद्रियों का क्या कर्तव्य है, हमारे कानों का कर्तव्य, हमारी जिह्वा का कर्तव्य क्या है, हमारी कर्म इंद्रिया, हमारे हाथ पैर, इन सब का क्या कर्तव्य है निर्भीक प्रभु, सब आप हमें बताइए। क्योंकि एक सामान्य जीव ये सारे कार्य करता तो है, सुनता रहता है, बोलता रहता है, कार्य करता रहता है, लेकिन क्या इसी के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है? आप अब मुझे ये बताइए स्मर्तव्यम, स्मरण करने योग्य कौन है? क्योंकि हृदय में हर वक्त कुछ न कुछ तो चलता रहता है, ये हृदय भगवान ने दिया क्यों है, किसको स्मरण करना चाहिए? स्मर्तव्य भजनीयम वा किसका भजन करना चाहिए, स्पष्ट बताइए। ब्रूहि यद्वा विपर्यया, सिर्फ ये मत बताना कि क्या बोलना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, किसे स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, खाली ये नहीं बताइएगा। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, विपर्ययम मतलब इसका उल्टा। किसका उल्टा? कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे नहीं स्मरण करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए, वो सब बता देना, कुछ बच न जाए, ताकि अगर कुछ रह गया तो फिर सिद्धि कैसे मिलेगी। मुझे सब कुछ बता दीजिए ताकि मुझे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो। अनुवाद, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मानो इतने सारे प्रश्नों को सुनकर शुकदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि फिर कभी बता दूंगा, अभी तो मैं ऐसे जा रहा था, आपको देखा तो यहाँ पर आ गया। तब वो कहते, नहीं नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है और आप भी ज्यादा देर कहीं पर टिकते नहीं हो। आज आप भाग्य से मेरे सामने प्रकट हुए हो, तो आप कृपा किए बगैर नहीं जा सकते। अब मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे इन सब समस्त प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए जरूर, क्योंकि वो कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानाम् अपि गोदोहनम् क्वचित्। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदिनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनम् क्वचित्। नूनम भगवतो ब्रह्मन्, क्योंकि आप भगवतो, आप भगवान बहुत शक्तिमान है, आप बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो गृहेषु गृहमेदिनाम, गृहस्थियों के घर में आप आते नहीं है, न लक्ष्यते, आप आते ही नहीं है, किधर किसी गृहस्थ के सामने प्रकट होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो ह्यवस्थानम, उस जगह पर, अपि गोदोहनम क्वचित, गोदोहन का समय, यानी पहले जमाने क्या होता था, गृहस्थ लोग अपने घर में गाय रखते थे, अवश्य गायों का बहुत सत्कार होता था, गाय का दूध पिया जाता था, बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता था, इसी से जीवों की बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती थी, वो भक्ति और अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी गाय को देखते थे ना, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो जाता था। वैसे तो वो गृहस्थियों के सामने आते नहीं थे, कभी प्रकट होते नहीं थे, लेकिन कभी देखते थे। यदि गोदोहन का समय हो जाता है, गोदोहनम क्वचित, देखते थे कहीं पर गोदोहन हो रहा है, गौ को दोहा जा रहा है, तो खड़े होकर एक टक उस दृश्य को देखते थे, क्योंकि उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण की याद आती थी, भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो आता था, इसलिए वो वहां से जा नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे। फिर जब ये गोदोहन का समय समाप्त होता था और वो फौरन से वहां से अलक्ष्य, वो छू हो जाते थे, दिखते नहीं थे। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, हे शक्तिशाली ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दोही जाती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थी के घर प्रातः काल गौओं दोहनों के समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोष्ण एक पौंड दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर ही जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ कम से कम 10 गौवें रख सकता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 काट दूध देती है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ पौंड दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थियों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह
सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी ग्रस्त के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत ग्रस्तियों के घरों में बिरले ही देखे जाते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। ग्रस्तियों को भी उतना ही बुद्धिमान होना चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थी को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे बाजार उपदेश दें। संतों तथा ग्रस्तों में पारस्परिक आदान प्रदान होना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें सिद्धांत दे रहे हैं कि कभी किसी भक्त का यदि आगमन हो जाए तो उसे फिजूल की बात नहीं करनी चाहिए, सीधी बात पूछनी चाहिए, अपने कल्याण के विषय में पूछना चाहिए कि आप मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, और उस उनकी बातों को श्रवण करना ही हमारा कल्याण है। जैसे परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा जो सुनाएंगे उसी से कल्याण होगा, तो अवश्य भक्तों के साथ इसी तरह का वार्तालाप करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के साथ भगवत विषय भगवत संबंधी वार्तालाप करना चाहिए। तो इतना सुंदर जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का आपस में वार्तालाप हुआ, उसके उपरांत सुत गोस्वामी अपने विषय में वे कहते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं, और अंतिम श्लोक श्लोक नंबर 40 में वे कहते हैं,
सुत उवाच एवमाभाषितः पृष्ठ सराज्ञाश्लक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी एवमाभाषितः पृष्ठ सराज्ञाश्लक्ष्मणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी एवमाभाषित एव सुत गोस्वामी कह रहे इस प्रकार जब उन्होंने आभाषित वो बोले जाने पर उन्होंने जब पूछा सराज्ञाश्लक्ष्मणया गिरा, बहुत ही श्लक्षणया का मतलब होता है बहुत ही मीठी शब्दों में जब उन्होंने सुत गोस्वामी का सत्कार किया, उनसे प्रश्न पूछे, तो प्रत्यभाषतः धर्मज्ञो वो धर्मज्ञ है, वो धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। प्रत्यभाषत उन्होंने उत्तर दिया भगवान बादरायण वो साक्षात भगवान है, शक्तिमान पुरुष है। मतलब भगवान का मतलब होता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी कहा जाता है भगवान बादरायण ही। तो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उनके इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अभी वो उत्तर हम दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे, और यहाँ पर तो हमें प्रश्न को क्लियर रखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं कि एक जीव का क्या कर्तव्य है, वो जी रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसके लिए कार्य करना चाहिए, और मर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अभी वो दूसरे स्कंद से प्रारंभ करेंगे। अनुवाद देखिए, श्री सूत गोस्वामी ने कहा इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की और प्रश्न किए तथा महान एवं शक्तिशाली पुरुष एवं धर्मवेत्ता व्यासदेव के पुत्र ने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का आगमन शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। श्री प्रभुपाद की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी खुशी की, मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज से 2 साल पहले जन्माष्टमी के दिन हमने पहला श्लोक पढ़ा था जन्मादस्य यतुन, और तब मुझे ऐसा लगा था कि भगवान की कृपा है कि आज भगवान का जन्मदिन है और आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने जब भागवतम शुरू किया था तब पहले तो हम लोगों ने इसके प्रारंभ का जो लिखा हुआ है श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत से कुछ लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया, वो सब पढ़ा। और जिस दिन प्रथम श्लोक था ना उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, और मुझे ऐसा लगा था कि भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है कि जन्माष्टमी के दिन हमारा भागवतम प्रारंभ हुआ, और आज पुनः जन्माष्टमी का दिन है और हमारा पहला स्कंद संपूर्ण हुआ। इसका सारा श्रेय
गुरु महाराज की कृपा पर, भगवान की अहितु की कृपा और आप सबकी प्रार्थनाओं पर मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकेंगे। बस एक इच्छा थी, कृष्ण से ये याचना की थी कि आप मुझे यूज करो कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में किसी तरह से, क्योंकि मैं बहुत ही सुस्त हूँ, बहुत ही नालायक किसी भी काम में, मतलब ऐसी धूल जो किसी काम में नहीं आती है, ऐसी हूँ मैं। तो मैं अपने जीवन को देखती थी तो कहती थी, ऐसा लगता था कि मुझसे कोई सेवा नहीं हो पाती कृष्ण की, काश भगवान मुझे किसी सेवा में उपयुक्त करें। और ये भगवान की कृपा है, प्रार्थना से, गुरु और महाराज की कृपा से, गुरु और गौरंग की अहितु की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को संपूर्ण करने के भगवान ने हमें ये अवसर, ये पल दिखाए। ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये प्रथम स्कंद मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ टास्क, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सरलता से हो जाएगा। बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक शब्द को हमने समझने का प्रयास किया। आप सबसे हाथ जोड़कर चरणों में दंडवत करके प्रार्थना है कि अनेकों बार, क्योंकि मेरी वाणी बहुत कठोर है, मुझे सही शब्दों का उपयोग करना नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता होगा कि जब मैं श्लोक के विषय में बताती होगी तो ऐसे शब्द जो आपको चुभते होंगे, अच्छे नहीं लगते होंगे, आपके हृदय को ठेस पहुंचती होगी। मेरा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं होता है कि मैं किसी को हर्ट करूं, किसी के दिल को दुखाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्र कहता है जो नरक से आते हैं उनकी वाणी बहुत कठोर होती है, और मैं जानती हूँ कि मैं नरक से आई हूँ और मेरी वाणी बहुत कठोर है, हर किसी को हर्ट करने वाली है। तो आप सबको यदि कभी मेरे शब्दों से कोई हर्ट हुआ हो, आपका दिल दुखा हो, तो कृपया मुझे अपनी दास समझ के, अपनी दासी समझ के क्षमा करना और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना कि मैं जीवन भर ये सेवा करती रहूं, मेरी सेवा को स्वीकार करते रहना और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे प्रकार से करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हृदय के अंदर भगवत प्रेम की एक जरा सी बूंद भी यदि प्राप्त हो जाएगी तो मैं समझूंगी कि भगवान मेरी सेवा से संतुष्ट है। हरि बोल।